الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأمه صديقة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اس کلاس میں ہم اپنے شیخ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دام برکاتہ ہم کی کتاب مثالی عورت میں سے پڑھتے ہیں، اور اس میں مثالی ماں کا آج کل موضوع چل رہا ہے. یہ سلسلہ اگر کسی آپ میں سے کچھ کو یاد ہوگا انشاءاللہ کہ یہ سلسلہ جو ہے نا وہ شروع کہاں سے ہوا تھا. شادی خانہ آبادی یہ پہلا سمجھ لیں کورس تھا اس سلسلے کا، شادی خانہ آبادی. تو وہ جب مکمل ہوا تو اس کے بعد پھر ہم نے ان کتابوں سے پڑھنا شروع کیا، مثالی عورت اور مردوں میں مثالی مرد. تو اس کو پھر ہم نے یہ نام دیا کہ یہ شادی خانہ آبادی ہی کا جو ہے نا وہ سیکول ہے، اسی کا جو ہے یہ یعنی ایک سلسلہ ہے. پارٹ ٹو کہہ لیں یا پارٹ جو بھی پارٹس ہیں اس کے بعد میں. جیسے کہ پھر ہم نے پھر مثالی بیٹی سے یہاں پہ پڑھنا شروع کیا تھا. مثالی عورت کو ہم نے مثالی بیٹی میں سے پڑھنا شروع، مثالی بیٹی کے ٹاپک سے شروع کیا تھا. وہی سب سے پہلا ٹاپک ہے. تو اس میں یہی بات کری تھی کہ اگر یعنی بیٹی جو ہے وہ ایک اچھی تربیت یافتہ بیٹی بن گئی تو یہ جو ہے وہ اس کی شادی خانہ آبادی کا سبب بنے گی. ٹھیک ہے، یعنی شادی خانہ بربادی کا نہیں بلکہ شادی خانہ آبادی کا سبب بنے گی. اس کی شادی ہوگی تو اس سے جو ہے وہ گھر آباد ہوگا، نہ یہ کہ شادی تو ہو گئی لیکن اس کے بعد پھر گھر جو ہے وہ برباد ہو گیا. اور برباد ہونے اس صورت میں جو گھر برباد ہوتے ہیں نا، تو پہلے تو یعنی اگر خالی اکیلے گھر شادی سے پہلے جو ہے نا وہ ایک گھر برباد ہوتا ہے، لیکن شادی کے بعد جو بربادی ہوتی ہے تو پھر وہ دو گھروں تک پہنچتی ہے. تو شادی خانہ آبادی کا ہی سلسلہ جو ہے گویا کہ یہ چل رہا تھا. اور ظاہر ہے مثالی بیٹی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ مثالی ساس، مثالی بہو وغیرہ جو سارے ٹاپکس تھے ان سب کا تعلق جو ہے وہ اس کے ساتھ بنتا ہے، شادی خانہ آبادی کے ساتھ. اور ظاہر ہے پھر اس کا تعلق جو ہے وہ مثالی ماں کے ساتھ بھی بڑا گہرا ہے، کیونکہ ماں نے جو ہے وہ بیٹی کی اچھی تربیت زیادہ تر ماں نے ہی کرنی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ ٹاپک چل رہا ہے اگرچہ کہ چونکہ یہ مثالی ماں کا ٹاپک ہے تو صرف بیٹیوں کی تربیت اس کے اندر نہیں ہے بلکہ بیٹوں کی تربیت بھی اس کا حصہ ہے، کیونکہ ماں نے دونوں کی تربیت کرنی ہوتی ہے. اس میں ہم صفحہ نمبر 128 کے اوپر تھے آخری کلاس میں، اور جو پوائنٹ ہم نے پڑھ لیا تھا آخری وہ تھا کہ پھر ان کے اندر کچھ سوشل چینجز بھی ہوتی ہیں. یعنی بلوغت کی عمر کے بچوں کی تربیت، یہ عنوان چل رہا ہے نا. تو اب جب بچے بلوغت کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو ان کے اندر کچھ سماجی تبدیلیاں بھی آتی ہیں، سوشل چینجز بھی آتی ہیں. دے چینج ڈپینڈنس فرام پیرنٹس ٹو پیئرس. وہ اپنے والدین کی بجائے نا اپنے ساتھیوں کے اوپر انحصار شروع کرتے ہیں. دے وانٹ لو اینڈ سیکیورٹی. وہ محبت اور تحفظ کا احساس چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اصل میں یہ جو وہ جو اپنے یعنی ڈپینڈنس کو چینج کرتے ہیں نا، تو اس چینج کی کچھ ریزن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ ان کے جو بایولوجیکل چینجز ان کے اندر آ رہی ہیں، ان کے ہارمونل چینجز جو ہو رہی ہیں، تو ہارمونز کے اندر سے کہیں سے یہ آواز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، ہارمونل گلینڈز کے اندر سے یہ آواز نکلتی ہے کہ اب پیرنٹس کو چھوڑ دو اور دوستوں کے ساتھ تعلق بنا لو. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ چونکہ آواز نکلتی ہے تو وہ پیرنٹس کے ساتھ تعلق کو توڑ دیں اور دوستوں کے ساتھ تعلق بنا لیں. نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اندر سے یہ آواز نہیں آ رہی ہوتی، اندر سے یہ آواز نہیں آ رہی ہوتی بلکہ اندر سے کچھ اور آواز آ رہی ہوتی ہے. وہ کچھ اور آواز کیا ہوتی ہے کہ مجھے محبت چاہیے، مجھے جو ہے نا وہ اخلاص چاہیے، مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جن کے ساتھ جو ہے نا میں यानी अपने अपने दिल का हाल खोल सकूं, मैं उनके साथ जो है वो राजो न्याज कर सकूं, मुझे ऐसे लोग चाहिए, ठीक है, कि जिनके साथ जो है ना मैं पर्सनली एक डिस्कशन कर सकूं या उनके साथ अपने थॉट्स को शेयर कर सकूं, ठीक है ना, ये चीज चाहिए होती है उसको, ये एक तकाजा अल्लाह ताला की तरफ से इंसान के बदन के अंदर पैदा हो रहा होता है, ठीक है ना, ये यानी सुभान अल्लाह, ये ग्लैंड्स क्या है, ये बेसिकली वुदूद कहते हैं ना इनको उर्दू में, ग्लैंड्स को, ये टिश्यूज हैं, ठीक है ना, ये सेल्स, ये यानी एनिमल सेल्स के बने हुए चीजें हैं, टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके अंदर ये चीज क्या, अल्लाह ताला ने उनके अंदर केमिकल्स रखे हैं, यानी लिटरली जो है ना वो ये ऐसे क्या कहते हैं, माया, माये कहते हैं ना, यानी सॉल्यूशंस, केमिकल्स, ठीक है, उनके अंदर यानी क्या है ये, यानी बेसिकली वो सारा का सारा, आप केमिस्ट्री की साइंस में आप चले जाएं, राइट, कि भाई ये क्लोरीन तो सोडियम तो पोटेशियम तो पता नहीं, ये सारी सारी चीजें बेसिक केमिकल्स क्या है, यही सब कुछ है, ठीक है ना, लेकिन इन केमिकल्स की सिक्रीशंस के ऊपर इंसान के जज्बात डिपेंड करते हैं, इनका ताल्लुक अल्लाह ताला ने इंसान की रूह के साथ बना दिया, ये केमिकल्स, ये ग्लैंड, ये सब हमारे जिस्म का हिस्सा है और जज्बात ये हमारी रूह का हिस्सा है, राइट, लेकिन रूह और जिस्म को अल्लाह ताला ने ऐसे जोड़ दिया है कि जिस्म के अंदर कोई तब्दीली होती है उसका असर रूह के ऊपर आता है, एंड वाइस वर्सा, रूह के अंदर कोई तब्दीली होती है उसका असर जिस्म के ऊपर जाता है, ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे पैवस्त हो जाते हैं, यानी अल्लाह की कुदरत का शाहकार देखें कि जब माँ के पेट के अंदर बच्चा बन रहा होता है तो उसके अंदर शुरू में रूह नहीं होती है, राइट, वो फिजिकली चीज जो है ना वो डिवेलप हो रही होती है, बन रही होती है, अल्लाह ताला उसमें रूह जो है वो होती तो है, यानी फीटस के अंदर भी रूह होती है, लेकिन वो रूह जो है ना वो इंसान वाली रूह नहीं होती, वो अशरफुल मखलूकात वाली रूह नहीं होती, वो रूह होती है जो कि अल्लाह ताला की हर मखलूक के अंदर है, जैसे पत्थर के अंदर भी रूह है, राइट, पौधे के अंदर भी रूह है, मिट्टी के अंदर भी रूह है, पहाड़ के अंदर भी रूह है, उहद पहाड़ के अंदर भी रूह है ना, दरिया नील के अंदर भी रूह है ना, हर चीज के अंदर रूह है, जब भी तो वो बोलते हैं, जब अल्लाह ताला का हुक्म आता है वो बात करना शुरू कर देते हैं, कभी नबी से बात करना शुरू कर देते हैं, कभी वही से बात करना शुरू कर देते हैं, वली से बात करना शुरू कर देते हैं, कभी जो है वो कुछ करते हैं, तो भाई रूह तो हर इंसानी रूह नहीं होती, इंसानी रूह कब आती है जब उसके ऊपर एक सर्टन पीरियड गुजर जाता है, 120 दिन गालबन ना हदीस में है, जब 120 दिन गुजर जाते हैं तो फरिश्ता वो इंसानी रूह लेकर के आता है और फिर वो उस फीटस के अंदर फूंक देता है अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, तो अब ये जो रूह है ना ये उस जिस्म के साथ जुड़ जाती है, रग रग रेशे रेशे के साथ पैवस्त हो जाती है, हत्ता कि उस जिस्म के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनके साथ भी ये रूह चिपक जाती है, यानी एवरीथिंग गेट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है, तो अब ये जो ग्लैंड्स की सिक्रीशंस हो रही हैं इससे जो है वो उस रूह के जज्बात मैनिपुलेट हो रहे हैं, राइट, वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो ये डिजायर पैदा होती है ना, तो इस डिजायर को जो फुलफिल करेगा वो उसके साथ अपना ताल्लुक बना लेगा, अगर पेरेंट्स उसकी इस जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही हैं तो फिर वो किसी और को तलाश करेगा, किसी और को तलाश करेगा, ये जो किसी और होता है ना इसको क्या कहते हैं, इसको दोस्त कहते हैं, ये जो कोई और है ना इसको दोस्त कहते हैं, यानी इसको आप वालदैन नहीं कहते, ठीक है ना, तो दोस्त की तारीफ ये नहीं है कि उसकी उम्र आपके बच्चे की उम्र के बराबर होनी चाहिए तब वो दोस्त होगा उसका, नहीं, दोस्त तो कोई भी हो सकता है, लोग तो बूढ़ों को दोस्त बना लेते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं जो कि अपने बाप की उम्र से ज्यादा किसी शख्स को दोस्त बना लेते हैं, राइट? तो वो भी दोस्त कहलाता है ना, वो बाप तो नहीं कहला सकता, दोस्त वो भी कहलाता है। कहने का मकसद ये है कि दोस्त का ताल्लुक उम्र के साथ नहीं है। तो ये मत समझे कि बस ये इस एक उम्र का बच्चा होगा या बच्ची होगी ना, तो बस यही मेरे बच्चे की दोस्त बन सकती है वरना नहीं बन सकती। नहीं, ऐसी कोई शर्त नहीं है। जो भी उसको उसकी ये डिजायर को फुलफिल करेगा वो उसका दोस्त बन जाएगा, क्योंकि वो उसका वालदैन तो नहीं बन सकता, वालदैन तो सिर्फ आप हैं, ठीक है? तो अब वालदैन को चाहिए नंबर वन कि ज्यादा से ज्यादा खुद ही ये जो उसकी 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 नीड्स है ना, ये जो नीड फॉर लव एंड सिक्योरिटी, वालदैन को चाहिए कि खुद ही ये प्रोवाइड करने की कोशिश करें, खुद ही ये प्रोवाइड करने की कोशिश करें जितना कर सकते हैं। लेकिन एक लिमिट आ जाती है, वालदैन हर चीज प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब क्या करें, अब तो उनको कोई और चाहिए होगा ना। अब दूसरी जिम्मेदारी वालदैन की ये है कि अब उनके लिए अच्छे दोस्तों का इंतजाम करें, बंदोबस्त करें अच्छे दोस्तों का, कि वो दोस्ती बनाएंगे। क्योंकि अब आप हर चीज फुलफिल नहीं कर सकते, हर उनकी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, तो अब वो जो अपनी बाकी मानदा जरूरत पूरी करें तो वो किसी बेदीन, बद अखलाक, राइट, इस किस्म के किसी इंसान के साथ ताल्लुक जोड़ करके अपनी जरूरियात पूरी ना करें, बल्कि अच्छे इंसानों के साथ जरूरियात पूरी हो जाए। तो अब ये माहौल प्रोवाइड करना, ये ऐसे दोस्तों के साथ उनका उनका ताल्लुक उनको मुहैया करना, उनको ऑप्शंस देना, ये वादा है जिम्मेदारी, ठीक है? तो ये कहाँ से मिलेगा? ये नेक महफिलों में जाने से, नेक लोगों के साथ उठने बैठने से, नेक लोगों के साथ जो है वो ताल्लुक बनाने से, ये ताल्लुक आपके बच्चों के लिए आपके पास दस्तियाब होगा। तो फिर आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ बना सकते, वरना आप नहीं बना सकेंगे, ठीक है? फिर आप रोते रहिएगा कि गंदे दोस्त बना लिए, और इसका दोस्त तो ऐसा है, और इसका दोस्त तो ऐसा है, और उसको ये भी, उसने उसको आइस के नशे के ऊपर लगा दिया, उसने उसको जो है वो वीडियो गेम्स के ऊपर लगा दिया, उस दोस्त ने उसको जो है वो फलाने तमाशों के अंदर लगा दिया। अब जो है वो कंप्लेन करते फिरते हैं, वाइन करते फिरते हैं, भाई काम आपने करना था वो आपने किया नहीं। तो अब बच्चे ने तो कोई ना कोई किसी के साथ तो फिर उसने अपना ताल्लुक बनाना है ना, उसने बना लिया ताल्लुक, ये आपका कसूर है, ठीक है? तो सवाल तो पूछ लिएगा। अगला पॉइंट क्या था कि दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देयर बिलीव। अच्छा, इसके ऊपर भी बात हो चुकी थी, क्वेश्चनिंग देयर बिलीव में एक्चुअली पॉइंट हम पढ़ चुके थे, चले बहरहाल इसके ऊपर काफी बात हो चुकी थी रिकॉर्डिंग के अंदर, इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो अगला पॉइंट फिर हम देख लेते हैं, बल्कि अगला भी हम पढ़ चुके थे, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वाला, निशान न लगाए तो तुरंत है बहरा, इनशाला उम्मीद है कि इसका भी फायदा ही होगा जो रिपीटेशन हो गई है। अगला पॉइंट था कि जवानी की उम्र में बच्चे चीजों को बहुत जल्दी सीखते हैं, और उनकी हसासियत नशा आवर चीजों के लिए, सुभान अल्लाह, अभी आइस की जो है वो बात हुई और अब नशा आवर चीजों से मुताल्लिक ही पॉइंट आ गया कि बच्चे बड़ी चीजों को बड़ी जल्दी सीखते हैं और उनकी हसासियत नशा आवर चीजों के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि उनके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं जो उनकी हसासियत को बढ़ाने का सबब बनते हैं। इसलिए ये बच्चे सिगरेट पीते हैं या नशे की चीजें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या और बुरे कामों की आदत उनमें आ जाती है। ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए चंद बहुत अहम बातें हैं, ठीक है? तो ये नशावर चीजें क्या होती हैं, स्टिम्यूलेट करती हैं आप आपके जज्बात को, ठीक है ना? ये जो नशावर चीजें नशावर क्यों कहलाती हैं कि इनके इनटेक से वो जो ग्लैंड्स की सिक्रेशंस होती हैं ना वो बढ़ जाती है, ग्लैंड्स की सिक्रेशंस बढ़ जाती हैं, ठीक है? तो ये जो है ना फिर यानी इंसान की रूह को जो है ना, रूह का जो वो नफ्स वाला पार्ट है, ये जो नफ्स है हमारा ये भी रूह का एक हिस्सा है ना, ठीक है? यानी वो जो नफ्स अम्मारा, नफ्स मुतमैना, नफ्स लवामा वाला जिसको कहते हैं, ठीक है? तो अब वो जो सिक्रेशंस बढ़ती हैं तो नफ्स को बड़ी अच्छी लगती है, नफ्स को अच्छी लगती है, तो वो इंसान चाहता है कि मैं और लूं ताकि मेरे नफ्स को और ज्यादा मजा आए। ये जो और लेना होता है ना, इस और लेने की जो ये जो ख्वाहिश पैदा हो जाती है ना, तड़प पैदा हो जाती है ना, इसी को नशा कहते हैं। तो नशा आवर का मतलब क्या होता है कि वो चीजें जो कि आपको अपने नशे में मुबतला करते हैं, उनको नशा आवर कहते हैं। वो नशे में कैसे मुबतला करती हैं, एक दफा आप खाते हैं आपके केमिकल्स की सिक्रेशन बढ़ जाती है, आपके नफ्स को जो है वो भली लगनी शुरू हो जाती है, आप उसको और लेना चाहते हैं, फिर दूसरी दफा लेते हैं, फिर आपको और अच्छा लगता है, आप उसको तीसरी दफा लेना चाहते हैं, तो इस तरह से वो चीज जो है ना वो आपका नशा बन जाती है। ठीक है, तो इस उम्र के अंदर जो है ना ये चीज और भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, बिकॉज ये नई नई चीजें होती है ना, ये जो जवानी में ये जो हार्मोनल सिक्रेशन होती है ये पहले नहीं थी, ये अब होना शुरू हुई है, तो ये एक नया यानी एहसास होता है बच्चों के लिए, बिल्कुल नया नया एहसास, तो उनको और ज्यादा आसानी के साथ नशे लग जाते हैं। जबकि जब 10 साल गुजर जाते हैं, 15 साल गुजर जाते हैं, तो अब भी ये चीज मौजूद होती है इंसान के बदन के अंदर, नशा वो फिर भी कर सकता है, 40 साल की उम्र में भी नशा कर सकता है, लेकिन वो नई चीज नहीं होती, वो पुरानी चीज हो चुकी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ना वो नशे से कम प्रोन हो जाता है बनिस्बत एक करीबुल बुलूग या नौजवान के, वो नौजवान जो होता है वो ज्यादा प्रोन टू नशा होता है। ठीक है, एक मिनट, किसी ने कुछ लिखा है यहाँ पे, चैट में, अगर कोई बच्चा गलत दोस्त बना ले तो अब उसको कैसे ठीक करें, क्योंकि 14 साल की उम्र में बच्चा किसी की बात नहीं सुनता। नहीं, ये कहाँ से आप ये वही लेकर के आई है कि 14 साल की उम्र में बच्चा किसी की बात नहीं सुनता, ये कहाँ से, कोई नुजूल हुआ है आपके ऊपर, कोई वही नाजिल हुई है आपके ऊपर कि 14 साल की उम्र में बच्चा किसी की बात नहीं सुनता? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यानी सारा कसूर 14 साल के बच्चे के ऊपर डाल दिया कि वो किसी की बात नहीं सुनता। भाई, आपने उसकी जो गत बनाई हुई है इस वजह से वो किसी की बात नहीं सुन रहा है ना, तो आप अपनी तो इसलाह करें पहले, राइट? बच्चे के ऊपर इल्जाम डालने से पहले अपनी इसलाह करें कि आपने उसको इस यानी ऐसा बना दिया है कि अब वो किसी की बात नहीं सुनता। ये मत कहें कि 14 साल का बच्चा किसी की बात नहीं सुनता, सुनता है, बहुत सारे बच्चे सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब उसने नहीं यानी आपने उसको बुरे दोस्तों के साथ एक्सपोजर दे दिया, अब जो है उसने बुरे दोस्त बना लिया, अब क्या करें भाई? सबसे पहले तो अल्लाह से माफी मांगे, अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे, लेकिन मुसीबत यही है कि सारा कसूर तो बच्चे का है, तो तौबा तो बच्चा करे ना, मैं क्यों तौबा करूं भाई, मैंने क्या कसूर किया है, उसने कसूर किया सारा का सारा, उसने दोस्त बुरे दोस्त बनाए, तो वही माफी मांगे अल्लाह ताला से, ये मुसीबत है सारी की सारी। कसूर हम करते हैं और इल्जाम किसी दूसरे को दे देते हैं, तो इसके बाद तौबा भी वही दूसरा ही करे, हम तौबा ही नहीं करते फिर उसके बाद, क्यों करें भाई तौबा, गलती तो हमने करी नहीं, हम क्यों करें तौबा? ठीक है, क्या ऐसा नहीं करते हम भाई, ऐसे ही करते हैं ना? तो भाई हमारा अपना कसूर है, हम पहले अल्लाह से तौबा करें, माफी मांगे और अल्लाह से कहें अल्लाह मेहरबानी फरमा दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अपने बच्चे को जो है वो बुरे दोस्तों से नहीं बचा सकी, राइट? मैंने अपने बच्चे को जो है ना वो अच्छे दोस्त नहीं मुहैया किए, ये मेरी गलती है, ए अल्लाह आप मुझे माफ कर दें मेरी गलती के ऊपर। ठीक है, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह आप अच्छे दोस्तों का इंतजाम भी फरमा दीजिए, आपके लिए क्या मुश्किल काम है, ये सारे आपके बंदे हैं, अच्छे भी बंदे हैं, आपके ही बंदे हैं, आप
नशा
इंतजाम फरमा दीजिए,
करने
तो मुझे तो अकी पता फरमा दी। बहरहाल, तो फिर उसके बाद जो है ना वो अब जब आप ये दुआएं अच्छी तरह से, पहले तौबा यानी इस आजिज ने पहले भी आप लोगों को बताया है, दो मीमों से बात शुरू होती है, पहला मीम माफी, माफी गलती पर माफी है ना, माफी जो है वो अच्छी चीजों पे नहीं मांगी जाती, माफी गलती पे मांगी जाती है, तो पहले अल्लाह ताला से माफी मांगना, फिर उसके बाद अल्लाह ताला से मदद मांगना। ठीक, और मदद किस चीज पे मांगी जाती है, जैसे पिछली क्लास की बिल्कुल आखिरी बात थी, मदद उस चीज पे मांगी जाती है जो इंसान खुद ना कर सकता हो, उस पे मदद मांगी जाती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला से मदद मांगने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं कि हम खुद नहीं कर सकते हमारे काम, इस वजह से अल्लाह ताला से मदद मांगे। ठीक है, तो माफी फिर मदद, अब उसके बाद जो है ना वो आप कोशिश शुरू करें इसके ऊपर। ठीक है, तो उसके जो दोस्त बने हैं तो कुछ ऐसा करें कि उस दोस्त से उसकी मुलाकात जो है ना वो खत्म हो जाए। मुलाकात के जो रास्ते हैं ना, जो तरीके हैं, जो उसके पास चैनल्स हैं दोस्त से बात करने के, उन चैनल्स को खत्म करने की कोशिश करें। अगर वो इंटरनेट के जरिए से दोस्त से बात करता है तो इंटरनेट को जो है वो उसका डिस्कनेक्ट करें, ठीक है। और अगर वो मोहल्ले में जाकर के दोस्त से बात करता है तो या तो उसका बाहर निकलने के ऊपर पाबंदी लगाने को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उसके लिए ऑल्टरनेटिव इंतजाम करें कि वो मोहल्ले में जाकर के दोस्त उसके साथ जो है वो टाइम लगाने के बजाय वो किसी और अच्छी मशगूलियत के अंदर लग जाए, किसी और ऑल्टरनेटिव उसको सोहबत मिल जाए, कहीं और जो है वो जा करके जो है ना वो अपना वक्त गुजारना शुरू कर दे, मोहल्ले में जा करके वो वक्त ना गुजारे। यानी मुलाकात को खत्म करना है, बातचीत को खत्म करने का एहतमाम करना है, ठीक है। और ये खत्म भी जो है ना वो साथ साथ मुतबादल का इंतजाम करने पर ही आप खत्म कर सकते हैं। अगर आप मुतबादल का अच्छा इंतजाम नहीं करेंगे और खाली जो है ना बस इसको खत्म कर देने की ही मेहनत करते रहेंगे तो बच्चा जो है ना फिर वो बगावत पर उतर आएगा और फिर वो किसी न किसी चोर दरवाजे के जरिए से अपने दोस्त के साथ मुलाकात का तरीका निकाल लेगा, चोर दरवाजे के जरिए से मुलाकात का तरीका निकाल लेगा और आपकी सारी मेहनतें जो है ना वो खाक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव का इंतजाम कर, दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से फिर आपको अच्छे अच्छे आइडियाज भी मिलते रहेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से आपको ऑल्टरनेटिव्स के एहतमाम भी होता रहेगा, ठीक है। तो दुआ जरा अच्छे से, माफी अच्छे से मांगनी है, ठीक है, और मदद अच्छे से मांगनी है, फिर उसके बाद ये सारी चीजें करनी है, अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाते हैं फिर उसके बाद। अच्छा, तो नशे के बारे में बात उम्मीद है कि आपके समझ में आ गई होगी। तो अब जो है ना हजरत ने फिर ऐसे बच्चों की तरबियत के लिए अहम बातें जो लिखी हैं उनमें पहली बात ये है कि सेट क्लियर डिफाइंड रूल्स एंड वैल्यूज, उनके लिए वाज़ह उसूल व ज़वाबित और अकदार मुतय्यन करें। वैल्यूज, अकदार कहते हैं उसको उर्दू में। अच्छा, तो उसूल और ज़वाबित और अकदार यानी रूल्स बनाए, ठीक है। जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है इसके ऊपर कि घर के अंदर जो है ना ये कैसे रूल्स होने चाहिए, अब रूल्स भी जो है ना वो ऐसे होने चाहिए, है ना, कैसे होने चाहिए, अल्लाह की मर्जी वाले रूल्स होने चाहिए, खाली हमारी मर्जी वाले रूल्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, कि मेरी मर्जी है कि कोई ब्राउन कपड़े नहीं पहनेगा, ये अल्लाह की मर्जी का इससे क्या ताल्लुक है, कोई ब्राउन कपड़े नहीं पहने गए तो आपकी मर्जी है ना, ठीक है ना। मेरी मर्जी ये है कि कोई जो है ना वो अंग्रेजी में बात नहीं करेगा, उर्दू में बात करेगा, भाई ये इसमें भी कोई अगर दीनी रीजन है तो फिर ठीक है, वरना आपके खाली या अंग्रेजी में बात करेगा उर्दू में बात नहीं करेगा, तो इसका अल्लाह की मर्जी से क्या ताल्लुक, आपने अपनी खामखा की उल्टी सीधी मर्जियां बनाई हुई है, ठीक है ना, कोई तुक होनी चाहिए ना मर्जी की। तो अल्लाह की मर्जी वाले रूल्स बनाए घर के अंदर, जैसे नंबर 1, कोई झूठ नहीं बोलेगा, राइट, नो लाइंग, ठीक है, नो चीटिंग, ठीक है ना, कोई किसी को धोखा नहीं देगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, झूठ को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, धोखे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है, एब्यूसिव लैंग्वेज कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, बेहयाई की बात कोई नहीं कर सकता, राइट, नो हिटिंग, एक दूसरे को मारने की बिल्कुल इजाजत नहीं, छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों या बड़े लोग हों, मारने की किसी को इजाजत नहीं है, ये उसूल होने चाहिए। इनडिसेंसी के अपने लिबास में या अपनी हरकतों के जरिए, या बेशर्मी वाली कोई हरकत हमारे घर में, इसकी इजाजत नहीं, ठीक है। नमाज छोड़ना 7 साल, बल्कि बच्चों को तो 5 साल की उम्र से ही, बच्चों नेकों के बच्चे होते हैं वो तो 4 साल 3 साल की उम्र से जो है वो नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं, मतलब कॉपी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, 6 साल की उम्र में जो है वो कुछ कुछ रेगुलरिटी आ जाती है, 7 साल की उम्र में तो बकायदा कहने का भी हुक्म है, ठीक है। तो नमाज की अगर आपकी उम्र हो चुकी है 7 8 9 साल की तो बस अब नमाज नहीं छोड़, ये उसूल घर में होना चाहिए, ठीक है। खिदमत का कोई मौका आपको मिल रहा है या आपको कहा जा रहा है खिदमत के लिए, तो उसके ऊपर नो रिफ्यूजिंग, उसके ऊपर इनकार, ये हमारे घर के अंदर इसकी इजाजत नहीं, खिदमत से इनकार की इजाजत नहीं, ठीक है। तो ऐसे जो है ना वो घर के अंदर रूल्स बनाने को कह रहे हैं, ठीक है, उसूल और जवाबित और अकदार, यही अकदार कहलाने के काबिल भी, सही है। इसी तरह से ये गैजेट्स वगैरह का इस्तेमाल हो गया, टेलीविजन, म्यूजिक, नो म्यूजिक इन द हाउस, एब्सोल्युटली नो म्यूजिक इन द हाउस, ये शैतान की आवाज होती है और ये घर के अंदर हमारे इसकी इजाजत नहीं, ठीक है ना। बेपर्दगी की हमारे घर के अंदर इजाजत नहीं है, कोई बाहर से भी आंटी आकर के जो है ना वो घर के अंदर बेपर्दगी वाली हरकत नहीं कर सकती, हमारे घर के अंदर इजाजत नहीं है, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी इसकी इजाजत नहीं, ठीक है। तो ये हो गई बात। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक नुक्ता आप लोगों को पिछली किसी क्लास के अंदर बताया था, ये रूल्स से मुताल्लिक, तो वो अगर किसी को याद, रूल्स के साथ हमने एक बहुत अहम बात जो है ना वो पिछली क्लास के अंदर, पिछली किसी क्लास के अंदर आपको बताई थी, वो किसी को याद है? घर के अंदर रूल्स बनाने से मुताल्लिक एक बात थी। एक शर्त थी रूल्स के साथ, रूल्स क्या होने चाहिए, तो हमने आपको बता दिया ना कि आपके खाली अपनी मनमर्जी के रूल्स होने चाहिए, इनका ताल्लुक जो है वो अल्लाह के साथ होना चाहिए, दीन के साथ होना चाहिए, राइट। ये हम आपसे नहीं पूछ रहे, बल्कि हम आपसे कुछ और पूछ रहे हैं कि रूल्स के साथ एक बहुत अहम शर्त है, वो क्या? अच्छा, आपने जो है सवाल कर लिया कि रूल्स मेहमानों पे भी इम्प्लीमेंट करने होते हैं, रूल्स मेहमानों पर भी इम्प्लीमेंट करने होते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द रूल्स आर, विच रूल्स, ठीक है। जैसे कि म्यूजिक, मेहमान साहब घर में आके आपकी म्यूजिक नहीं बजा सकते, नो, मेहमान साहब घर में आकर के या साहिबा घर में आकर के बेहयाई की कोई बात नहीं कर सकते, मेहमान घर में बैठ करके आपकी बेहयाई की बात करना शुरू कर देगा तो आप जो है वो मुस्कुराते रहेंगे उसके सामने, ठीक है ना, यानी बेहयाई की हरकत या कोई और इस किस्म की उल्टी सीधी चीज, तो डिपेंड करता है ना कौन से। अब मेहमान साहब आपके घर में आके झूठ बोलना शुरू कर दें, तो अब वो मेहमान जो है ना वो आपकी औलाद तो है नहीं कि आप उनको जो है ना वो उस वक्त जो है वो झूठ और सच की तरबियत देना शुरू हो जाए, तो वो तो भाई एक ऐसी चीज है कि आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि बस अब जाए यहाँ से, चल जाएंगे किसी थोड़ी देर के बाद, ठीक है, तो अपने झूठ को साथ लेकर के जाएंगे, झूठ जो है ना वो उनके अपने साथ ही है, तो ये वाला रूल जो है वो आप मेहमान पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करता है ना रूल्स के ऊपर, तो कौन सी रूल आप कर सकते हैं कौन सी रूल, तो ये आपको थोड़ी अपनी सेल्फ जजमेंट और अपना सेल्फ इल्म, अकल, ये सब इस्तेमाल करनी पड़ेगी इसके लिए, या सीखने कुछ तजुर्बे के से ये चीजें सीखता है इंसान। अच्छा, हमें खुद भी सारे रूल्स फॉलो करने हैं, ये तो एक बदीही सी बात है, बदीही का मतलब होता है बिल्कुल अपेरेंट, बिल्कुल ऑब्वियस बात, ठीक है ना, कि आप रूल्स बना रहे हैं दूसरों के लिए और खुद कोई फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये तो यानी इसको तो फिर आप रहने ही थे, यानी इतनी इतनी ऑब्वियस और इतनी क्लियर बात है कि हमने कोई आपको नए नुक्ते के तौर पर ये बात नहीं बताई थी, यानी ऐसी चीज जो कि हम इग्नोर कर देते हैं, नहीं बल्कि कुछ और बताया था आपको, खुद भी अमल करना होगा, नहीं है तो वो भी। उसूल बनाने के बाद माहौल बनाना, उसूल बनाने के बाद माहौल बनाना, हाँ बिल्कुल सही, माशाल्लाह लोगों को याद भी है कि, और सही जवाब दिए कि उसूल बनाने से पहले माहौल, पहले माहौल बनाना होता है, इन्होंने जवाब दिया है, पहले माहौल बनाना होता है वरना पनिशमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, वरना पनिशमेंट आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है, कि अगर ऐसे नहीं किया तो फिर मैं पनिश करूंगी, भाई आपने माहौल ही नहीं बनाया या माहौल है ही नहीं, तो अब बच्चे को जो है वो आप कैसे पनिश करेंगे, क्योंकि आप मतलब बच्चा बच्चा है, वो कोई वैसा कोई बड़ा इंसान भी नहीं है कि जिसको आप इतनी बड़ी आजमाइश में डाल दें कि माहौल जो है वो बिल्कुल गैर मुवाफिक हो, लेकिन वो फिर भी उसूलों के ऊपर अमल कर रहा हो, ये बच्चे के बस की बात नहीं है, बड़ों के लिए तो फिर ठीक है, ये उसूल चलता है कि माहौल अगर खिलाफ भी है फिर भी उन्होंने उसूल की खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, लेकिन बच्चों के साथ दिस इज टू मच, ठीक है, गलत और गुनाह वाले माहौल में ना जाना और ना बच्चों को जाने देना, और गलत करे तो सजा भी देना, क्या जुमला आपका थोड़ा सा उल्टा हो गया है, मकसद यही कि पहले माहौल बनाएंगे तभी रूल्स को एनफोर्स कर सकते हैं। अगर माहौल नहीं है तो फिर आप रूल्स को एनफोर्स नहीं कर सकते। बाहर से भी आकर कोई आपके बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। हाँ, बाहर से आने वालों के लिए एक रूल ये है कि वो बाहर से आकर के ना आपके बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकते। इसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ता है। घर के अफराद को, माँ को, बाप को, ठीक है ना, खुसूसन माँ को, बिल्कुल जिस तरीके से एक वो है ना, बचपन से हम ये कहानी हर एक ने पढ़ी होगी अपने बचपन की किसी किताब के अंदर, कि मुर्गी जो है ना वो अपने चूजों को कैसे महफूज करके, चील जो है वो अटैक करने के लिए आती है और मुर्गी जो है वो अपने बच्चों को जो है ना वो चूजों को अपने परों के अंदर ले लेती है, राइट, और वो अपनी जान पे जो है वो खेल जाती है लेकिन बच्चों के ऊपर आँच नहीं आने देती, बाहर की चील को आकर के ना अटैक नहीं करने देती। बिल्कुल यही मामला जो है ना वो माँ का अपने बच्चों के साथ होना चाहिए, ठीक है। एक किसी ने वीडियो भेजी कि एक एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर किस्म की कोई चीज जो है ना वो खेत के ऊपर जा रही थी और जोर जोर की उसको जो है वो एक चिड़िया की आवाज आनी शुरू हो गई, बड़ी सी, यानी एक एक सीगल टाइप की कोई चीज थी, वो जोर जोर से चिल्लाना शुरू हो गई। अब इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसने सर बाहर निकाल करके जब आगे देखा ना, तो उसका जो ट्रैक्टर का जो वो था व्हील या जो भी जो जो था उसका रेल जो होती है, बिल्कुल उसके आगे जो है वो एक घोंसला था जमीन के ऊपर और उसके अंदर अंडे थे, उस बर्ड के अंडे थे। और वो ऐसे शोर मचा रही है कि जिस वो ड्राइवर जो है ना वो फिर बिलाकर उतरा अपने ट्रैक्टर से, वो उसके पास भी फोन तो आज आजकल सबके पास होता है, उसने बकायदा वीडियो बनाई कि ये जो चिड़िया है ना ये अपने घोंसले को बचाने के लिए कितना जो है वो चिल्ला रही है कि इतना बड़ा ट्रैक्टर जो है ना उसका रास्ता उसने रोक दिया, ठीक है। तो माँ को जो है वो अपने बच्चों के साथ ऐसे होना जरूरी है, तो इसके लिए बड़ी इस्तकामत की जरूरत पड़ती है और इस्तकामत अल्लाह ताला से मांगना भी चाहिए और उसके लिए अपने ताल्लुक भी नेक लोगों के साथ ऐसे बना लेना चाहिए कि आपकी जो है ना वो पीठ पर, आपके बैक के ऊपर जो है ना वो सपोर्ट मौजूद हो, आपको सपोर्ट करने वाले मौजूद हो कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं, आप इन लोगों की बात बिल्कुल भी ना माने जो आपको जो है ना वो आपके बच्चों के साथ जो है वो खराब कर रहे हैं और आपके घर के माहौल को खराब कर रहे हैं। बिल्कुल इनके सामने जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। रूल्स फॉलो करने के लिए माहौल मुहैया करना, जी बिल्कुल ठीक है, मेक श्योर टू प्रोवाइड अ माहौल दैट इज रियलिस्टिक टू इम्प्लीमेंट दीज रूल्स, एब्सोल्युटली ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर बिल्कुल सही, माशाल्लाह बहुत खुशी हुई, अल्लाह ताला आप लोगों को सबको जजाए खैर अता फरमाए कि आपने बात को याद रखा, ठीक है। अच्छा, ये याद में भी ना थोड़ा सा याद रखना भी जो है ना वो इसमें भी नीयत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो आपने याद रखा है इसमें नीयत जो है ना वो ये होनी चाहिए कि आप अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करें, अल्लाह ताला से मदद मांगे। इसकी नीयत ये नहीं होनी चाहिए कि अपने लिए जो है ना वो एस्केप रूट, राइट, ये भी तो एक नीयत हो सकती है। अब मैं आपसे बदगुमानी नहीं करना चाहता कि आपकी ये नीयत है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी नीयत है, लेकिन ये एक नीयत हो सकती है, शैतान ये नीयत डाल सकता है ना आपके अंदर कि ये एक एस्केप रूट है कि भाई मैं क्या करूं, ये तो माहौल ही खराब है और तो सास और ससुर और मैं तो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहती हूं तो बस क्या करूं जी, माहौल ही खराब है, माहौल ही खराब है, तो अब जो है ना वो इसी वजह से तो मैं बच्चों को मैं रूल्स ही बनाती घर के अंदर, ठीक है ना। तो ये वाला जो एटीट्यूड है ना, ये इसके लिए अगर किसी ने इस बात को याद रखा हुआ है तो ये गलत नहीं है, ठीक है। और इनमल आमालु बिन्निया, सारे अमाल का दारोमदार तो नियतों पर होता है, तो नियत को ठीक करना बड़ा जरूरी है। तो ये बड़ा अहम पॉइंट है। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो दूसरी चीज क्या थी कि अगर बुरा माहौल है और आप दुआएं भी कर रही हैं और आप जो है वो उसको चेंज करने की कोशिश भी कर रही हैं जितना कर सकती हैं, राइट, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा, तो फिर अब आप बच्चों को सजा तो नहीं दे सकती क्योंकि माहौल ही खराब है, राइट, आप अपने रूल्स को एनफोर्स तो नहीं कर सकती क्योंकि माहौल ही खराब है, तो अब क्या कुछ भी नहीं करना, राइट। लेकिन एक बात बताई थी कि अभी भी एक चीज आपको फिर भी करनी लाजमन, जिसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, इवन माहौल खराब भी है ना फिर भी एक काम आपको लाजमन करना होगा अपने बच्चों के साथ, वो क्या, जहन साजी। क्या मतलब, किस चीज की जहन साजी, क्या जहन साजी, बेटा अब क्या करें, हम मजबूर हैं, माहौल ही खराब है, तो चलो करते हैं जो कुछ करना है, लेट्स लेट्स डू व्हेन इन रोम डू एज अ रोमन्स डू, राइट? सो लेट्स डू वॉट एवर बिकॉज द माहौल इज गुड, इज नॉट गुड, ये जहन साजी करेंगे आप बच्चों की. हाँ, सही और गलत, ये जो तारीफ है ना, ये मुश्किल माहौल की वजह से ये तारीफ नहीं खत्म हो जानी चाहिए, ये डेफिनेशंस उनकी मैसअप नहीं हो जानी चाहिए. ये माहौल खराब है तो अब जो है ना वो गलत को सही कहना शुरू कर दिया और सही को गलत कहना शुरू कर दिया, नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल जैसा आपने लिखा, क्लियर एंड ईमानी डेफिनेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, ठीक है ना? बेटा दादा अब्बू कर रहे हो या दद्दा कर रही हो या नन्ना कर रही हो या नाना कर रहे हो या मामू कर रहे हो या चाचू कर रहे हो या खालू कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, जो नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बता दिया कि ये गलत है वो गलत है, चाहे तुम्हारे अपने अब्बा कर रहे हो वो गलत है. हत्ता के हकीकत तो ये है कि बच्चे को ये तक जो है ना वो क्लियर कर दें, अगर आप कोई गलत काम कर रही हैं और आप खुद जो है ना वो उससे बच नहीं पा रही हैं, गलत काम कर रही हैं, बच्चे को ये तक बताना जरूरी है कि बेटा बेशक मैं कर रही हूं लेकिन ये गलत है, आप मेरे लिए दुआ करें, आप मेरी मदद करें कि मैं इस गलत काम से खुद बाहर निकल आऊं, लेकिन ये नहीं कि बेटा मैं कर रही हूं ना इस वजह से ठीक है, गलत काम जो है ना वो माँ के करने से ठीक नहीं हो जाता ना, ठीक है? तो ये जो है ना ये आखिरी दर्जा है, ये आखिरी दर्जा है, पता है ना सबको वाली हदीस, ये तो सबको इंशाल्लाह पता होगी ना कि बुरा काम होते हुए देखो उसको, हाथ से रोको नहीं रोक सकते, तो जुबान से रोको नहीं रोक सकते, तो दिल में उसको बुरा समझो. और नबी अलैहिस्सलाम ने खाली यहां तक नसीहतें करके बात खत्म नहीं कर दी कि दिल में बुरा समझो, नहीं, उसके बाद ये भी फरमा दिया कि इससे नीचे ईमान का दर्जा नहीं, अगर तुम बुरे को सही समझना शुरू कर दोगे, सही को गलत समझना शुरू कर दोगे, इसका मतलब यह कि तुम्हारा ईमान ही खराब हो गया, ठीक है? तो हम अपना ईमान तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना, कि सारी जिंदगी मुसलमानों की तरह जो है वो कर भी रहे हैं और नमाजें भी पढ़ रहे हैं और उम्रे भी कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, अपने आप को मुसलमान समझते हुए, पता चला कयामत के दिन पहुंचे तो पता चला हो आप तो ईमान से बाहर निकल चुके थे भाई, आप तो मुसलमान थे ही नहीं, आपने जितनी नमाजें पढ़ी हैं जीरो मिलेगा इनके ऊपर, ठेंगा भी नहीं मिलेगा, ठेंगे भी की कोई वैल्यू होती है, जीरो मिलेगा आपको, क्योंकि आपका तो ईमान ही नहीं था. फिर क्या करेंगे उस दिन, ये सारे हज और उम्रे जो है वो क्या करेंगे, फिर इनका अचार डालेंगे, फिर उसके बाद मुरब्बा बनाएंगे उनका, क्यों? क्योंकि हमने गलत को सही समझना शुरू कर दिया, सही को गलत समझना शुरू कर दिया, ये ईमान को खत्म कर देते हैं. अब डिपेंडिंग ऑन क्या उसकी उस तब अलग बातें, जो कि ईमान और कुफर की क्लास के अंदर हम आज रात को इंशाल्लाह उसके ऊपर मजीद बात करते रहेंगे, लेकिन कम अज कम ईमान खत्म, अगर किसी कोई ऐसी बात है जिससे ईमान खत्म नहीं होता फिर भी ईमान खराब तो हो जाता है ना, ठीक है? गलत को सही और सही को गलत समझने से ईमान खराब तो हो जाता है, और अगर कोई जरूरियात दीन में से कोई ऐसी बात हो तो फिर तो ईमान खत्म ही हो जाता है, ठीक है? बहरहाल, तो बुरे माहौल को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उसकी गलत को गलत ही समझना और सही को सही समझना, ये मिनिमम, ये बेर मिनिमम चीज है. दूसरी बात ये कि बच्चों को वाज़े अंदाज से बताएं कि व्हाट काइंड ऑफ ग्रेड्स यू वांट फ्रॉम देम, व्हाट काइंड ऑफ ग्रेड्स यू वांट फ्रॉम, ठीक है? ये जो पॉइंट है ना, ये स्पेशली होम स्कूलर्स के लिए और वो लोग जो कि अब थोड़ा थोड़ा सा समझना शुरू हुए हैं कि इस तालीमी निज़ाम के क्या क्या मुफसदात हैं और क्या क्या इसके खराबियां हैं और क्या क्या इसके जो है वो नुकसान हैं, तो उनके लिए जो है ना ये बड़ा अपेरेंटली बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म का स्टेटमेंट है. तो व्हाट काइंड ऑफ ग्रेड्स डू यू वांट फ्रॉम देम, आप उनसे किस किस्म के रिजल्ट की तवक्को करते हैं, ठीक है? तो ये जो लफ्ज ग्रेड्स है ना, दिस कैन बी वेरी वेरी यानी क्या कहते हैं उसको, मिसलीडिंग, ठीक है ना? लफ्ज ग्रेड्स, इट कैन बी वेरी मिसलीडिंग, ठीक है? हजरत ने यहाँ पे किया है, तो अब जब बड़े अगर कोई ऐसी बात कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, फिर बड़ों से अगर कोई अपेरेंटली जाहिरी तौर पे गलत बात हमें नजर आती है तो फिर हम क्या करते हैं, क्या करते हैं भाई, बड़ों से, अकाबरीन से, मशायख से, बुजुर्गों से, जब कोई हमें गलत बात नजर आती है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, राइट? इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब झूठ नजर आते हैं का ज़िबात इब्राहिम। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि झूठ, इसका मतलब है झूठ बोलना जायज हो गया क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बोला था। क्या ख्याल है, यही बोलते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोले थे तो इसका मतलब ये है कि झूठ जायज है, ये बोलते हैं। हजरत जी ने ग्रेड्स का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया तो उसका मतलब है हम कहेंगे ग्रेड्स का मतलब ठीक है क्योंकि हजरत जी कह रहे हैं, इस वजह से ग्रेड जो है वो ठीक है। तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के झूठ भी ठीक है, इसका मतलब है। क्या करते हैं, तावील करते हैं। ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह तावील करते हैं ना। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की भी तावील करते हैं तो हजरत जी जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा बड़े हैं, उनकी तावील नहीं करनी हमने। ठीक है, तो हम तावील करते हैं कि हजरत की मुराद क्या है यहाँ पे ग्रेट्स, राइट? हजरत की मुराद यहाँ पे जो है ना वो स्कूल के अंदर फर्स्ट आ जाना, जिसको फर्स्ट, मेरा बच्चा फर्स्ट आता है, मैं बोल रहा हूँ खास तरीके से फर्स्ट आता है क्योंकि ये मुसीबत उन बच्चों के साथ होती है जिनको इसका मतलब नहीं पता होता, वो बोल भी नहीं सकते सही तरीके। फर्स्ट आता है मेरा बच्चा, ठीक है ना, सेकंड आता है मेरा बच्चा, सेकंड आ गया, ओहो ये तो बेड़ा गर्क हो गया, सेकंड कैसे हो गया, थर्ड कैसे आ गया, बेड़ा गर्क हो गया इसका तो। ठीक है ना, ये जो ग्रेड्स की जंग होती है ना, ये ग्रेड्स की जंग जो है वो। अच्छा, अब तावील के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि तावील के लिए ना एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, वो ये होता है कि उन्हीं की किसी बात को उसकी तावील के लिए इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, उन्हीं की किसी बात को उनकी जो बजाहिर गलत बात है उसकी तावील के लिए इस्तेमाल किया जाए। तो अब अगले सफ़े के ऊपर हजरत की भी, हजरत ही की एक बात है कि ट्रीट देम, अगला पेज जरा सा अगर आपके पास किताब है तो अभी बात खत्म करने से, क्लास खत्म करने से पहले इस बात क्लियर कर लें, अगला सफा खोलें, पेज 130, सेम बुक, अगला सफा खोलें, तो उसमें हजरत ने लिखा है कि ट्रीट देम एज ए यूनिक इंडिविजुअल, डोंट कंपेयर देम विद एनी वन, ट्रीट देम एज यूनिक इंडिविजुअल्स, डोंट कंपेयर देम विद एनी वन, उनकी इनफरादियत का एहतराम करें, उनका किसी के साथ मवाजना ना करें। ठीक है ना, तो उन्हीं की बाज बात से जो है वो उनकी बाज बात की तावील होती है, जिस तरह कुरान मजीद में भी ऐसे ही होता है। कुरान मजीद किसका कलाम है, अल्लाह का कलाम। कुरान मजीद की कोई बात आपको समझ में ना आए तो उसकी तफसीर सबसे पहले किधर से करते हैं, कुरान मजीद के अपने अंदर से करते हैं ना। यही उसूल जो है वो हमारे मशाइख के साथ भी है। मशाइख की कोई बात हमें समझ में ना आए, कोई बात हमें गलत नजर आ रही हो, उन्हीं की किसी दूसरी बात से उसकी तावील करेंगे। ठीक है, तो ट्रीट देम एज ए यूनिक इंडिविजुअल, डोंट कंपेयर देम विद एनीवन। इसका मतलब क्या कि इसके ए प्लस आया है, इसकी कजन का ए प्लस आया है, इसका जो है वो बी ग्रेड क्यों आ गया, अब क्या मुसीबत है आपके साथ, आप कजन के साथ क्यों कंपेयर कर रही हैं इसको, राइट? क्यों कर रही हैं इसको कंपेयर कजन के साथ? ठीक है, तो ग्रेड्स का जो लफ्ज है ना इसकी तावील करनी होगी। इसका मतलब यही है कि आप सुस्ती, काहली और जो है वो बेतवज्जुही, इनको जो है वो आप खत्म करें, आप जो है वो जो काम कर रहे हैं वो अच्छे से करने की कोशिश करें, बाकी जो रिजल्ट्स है ना वो बेटा अल्लाह के हाथ में है। हम आपसे कोई इस किस्म की ना तो तवक्कात रख रहे हैं कि आप जो है वो चीता बन जाएं या चीती बन जाएं और आप जो है वो आप नंबर वन हो जाएं और आप जो है वो तमगे उठा उठा करके हमारे घर के अंदर उनका अंबार लगा दें, ऐसी कोई हम आपसे तवक्को नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम आपको कंपेयर नहीं करेंगे ना, हम आपको आपके दोस्त के साथ करना, हम आपको आपकी एक क्लास के अंदर दूसरी बच्चियों के साथ कंपेयर करेंगे, हम आपको जो है ना वो आपके कजन के साथ कंपेयर करेंगे। नहीं जी, आप हमारी बच्ची हैं, वो हमारी बच्ची नहीं है, आप हमारी बच्ची हैं, यू आर यूनिक, दे आर यूनिक, देर वो उनकी मर्जी, वो जो भी चाहे अपने बच्चे के साथ करें, हम अपने बच्चे के साथ तो वही करेंगे जिसको हम सही समझते हैं। ठीक है, तो ये जो स्कूलों के अंदर ग्रेड्स वाला सिस्टम है ना, ये इसके फायदे तो पता नहीं क्या होते हैं, मेरे तो नहीं समझ में आते क्या फायदे होते हैं, लेकिन नुकसान कम से कम बहुत सारे होते हैं। तो उन चक्करों में, और वैसे भी जब होम स्कूलिंग वगैरह के अंदर आ जाते हैं तो फिर तो वैसे भी इन ग्रेड्स का जो सिस्टम है ना वो खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन अब मुसीबत यह है कि होम स्कूलिंग करने के बावजूद जो है ना वो अपने वो जो रग रग रेशे रेशे के अंदर जो चीजें पेवस्त हो चुकी होती हैं अपने स्कूलिंग के जमाने से, निकल के नहीं दे रही होती हैं। ठीक है, तो उनको तो निकालने की कोशिश करनी चाहिए, बात को समझना चाहिए, इल्म हासिल करना चाहिए ताकि इन गलत नजरियात से जो है वो हम छुटकारा हासिल कर सकें। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। वा आखिर दावाना अन अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।